पृष्ठ संख्या 32। इस प्रकार की कविताओं का प्रारंभ बीजापुर के अशरफ नामक कवि से होता है, जिसने नौसरहार की रचना करके करबला की महान दुखांत घटना को अपने ढंग से प्रस्तुत किया। यह काव्य 1525 ईस्वी में लिखा गया। इसके बाद कुली कुतुब शाह, वजही, अली आदिल शाह, नुसरती, गवासी सभी ने मरसिये लिखे। इनमें कुछ कवि तो ऐसे भी हैं जो अपने जीवन भर केवल मरसिया ही लिखते रहे, क्योंकि वह इसे पवित्र और धार्मिक मानकर दूसरे विषयों से अपनी रचना शक्ति को भ्रष्ट नहीं करना चाहते थे। इस संक्षिप्त पुस्तक में उनका वर्णन विस्तार पूर्वक संभव नहीं है, साथ ही उन रचनाओं और पुस्तकों की भी कमी नहीं जिनमें भारत के जीवन और समाज का चित्र मिलता है। हिंदुस्तान की प्राचीन कथाओं पर आधारित कहानियाँ लिखी गईं, जिनमें मनोहर मधुमालती, पद्मावत, चंद्रबदन और महायार और तूतीनामा विशेष रूप से अध्ययन योग्य हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उस काल की रचनाओं में स्थानीय रंग बहुत गहरा है। भाषा में फारसी अरबी की भरमार नहीं है। कविता पर राज्य दरबार का प्रभाव तो अवश्य है, परंतु लगता है कि वह अपने बादशाहों की प्रशंसा करने पर मजबूर न थे। इसके अतिरिक्त उनमें धर्म और भक्ति से पैदा होने वाली स्वतंत्रता भी प्रबल थी। इसमें संदेह नहीं कि उस युग में जो कुछ लिखा गया उसका एक बड़ा भाग आज कोई साहित्यिक महत्व नहीं रखता, किंतु जिन कविताओं और पुस्तकों का उल्लेख ऊपर किया गया उनका केवल ऐतिहासिक महत्व नहीं है, बल्कि भाषा और साहित्य की दृष्टि से उर्दू साहित्य के इतिहास में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त है। अभी 17वीं शताब्दी का अंत नहीं हुआ था कि उर्दू भाषा गुजरात, अर्काट, मद्रास और मैसूर के कुछ भागों में पहुंच गई। गुजरात में उर्दू पर बहुत कुछ लिखा गया है। यहाँ संक्षेप में कुछ लेखकों और कवियों की ओर संकेत किया जाता है। 15वीं शताब्दी में गुजरात में कई बड़े बड़े सूफी कवि पैदा हुए। वह अपनी भाषा को कभी हिंदी कहते और कभी गुजरी। इनमें पहला नाम बहाउद्दीन बाजन का है, जिनके बहुत से दोहरे और शेर प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। 16वीं शताब्दी में शाह अली जिवगामधनी ने एक बड़ी मार्मिक सूफियाना कविता जवाहिरे असरा रुल्लाह लिखी, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से सबसे बड़ा नाम खूब मोहम्मद चिश्ती का है, जो फारसी में कई रचनाएं कर चुके थे, परंतु अपने गुरु का उपदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलचाल की भाषा को भी काम में लाए और एक मसनवी खूब तरंग के नाम से लिखे। यह मसनवी ऐसी कठिन जान पड़ी कि स्वयं उन्होंने उसका अर्थ फारसी में लिखा। यह कविता फ्रांसीसी में भी अनुदित होकर प्रकाशित हो चुकी है। 17वीं शताब्दी में अमीन गुजराती एक बड़ा कवि हुआ, जिसने यूसुफ जुलेखा लिखी। इसी प्रकार मद्रास में उर्दू तथा मैसूर में उर्दू पर भी शोधपूर्ण कार्य हो चुके हैं। पृष्ठ संख्या 33। दक्षिण में तो यह हाल था और उधर उत्तरी भारत में बोलचाल की भाषा के रूप में वह दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करती जा रही थी, परंतु साहित्य बहुत कम उत्पन्न हो रहा था। दक्षिण भारत में उर्दू साहित्य की जो धाराएं फूट वही थी और जो साहित्यिक परंपराएं स्थापित हो गई थी बीजापुर और गोलकुंडा के मुगल राज्य में मिला दिए जाने के कारण उनमें कोई बड़ी रुकावट नहीं पड़ी, क्योंकि भाषा और साहित्य का संबंध केवल राज्यसभा से नहीं था, बल्कि जनता भी उसको अपने जीवन के निकट पाती थी। इसलिए 1687 ईस्वी के बाद से दक्षिणी उर्दू के कवियों के यहाँ उन्हीं परंपराओं के आधार पर स्वच्छंदता और प्रवाह का विकास होता हुआ देख पड़ता है। हैदराबाद में नया आसिफी राज्य 1724 ईस्वी में स्थापित हुआ। बीच के 40 वर्षों में दक्षिण भारत ने उर्दू के कई अनमोल रत्न पैदा किए, जिनमें वली, वहरी और सिराज तो प्रथम श्रेणी के कवियों में गिने जाते हैं, परंतु इनके अतिरिक्त वजदी, वली, बैलोरी, दाऊद, उजलत और आजिज भी सुविख्यात हैं। इनमें पहले तीनों कवियों के काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, उन पर आलोचनाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं और शोधपूर्ण लेख बराबर लिखे जा रहे हैं। इसलिए उनका वर्णन कुछ विस्तार से करना आवश्यक है, क्योंकि इनमें से वली एक दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व भी रखते हैं। वली को एक समय तक उर्दू काव्य का बाबा आदम कहा गया है। यह बात ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं कि वली को उर्दू का प्रथम कवि माना जाए, परंतु इस दृष्टिकोण से यह विचार ठीक है कि वह दक्षिण के सबसे बड़े कवि थे और उन्हीं की कला ज्योति से उत्तरी भारत में भी उर्दू काव्य के दीप जले। अभी कुछ समय पहले तक वली के बारे में भी बहुत थोड़ी सी जानकारी मिलती थी, परंतु अब बहुत कुछ अनुसंधान हो चुका है जिससे उनके नाम, जन्मभूमि, मृत्यु इत्यादि के संबंध में कुछ बातें निश्चित रूप से मालूम हो गई हैं। वली का नाम वली मोहम्मद था। विद्या तथा ज्ञान प्राप्त करने का प्रेम उन्हें अपनी जन्मभूमि अहमदाबाद से निकलकर औरंगाबाद, सूरत और दिल्ली ले गया, जहां उन्होंने विद्वानों, कवियों और सूफियों से मिलकर अपनी प्यास बुझाने की चेष्टा की। उन्हें तसव्वुफ से हार्दिक लगाव था। इसका अनुमान उनकी कविताओं से भी लगाया जा सकता है। जब वह दिल्ली गए तो वहां के प्रसिद्ध सूफी और कवि सादुल्लाह गुलशन से मिले। यह बात निश्चित नहीं कि वह दिल्ली एक बार गए कि दो बार। उनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदाबाद में हुई। वली का काव्य संग्रह अनेक बार प्रकाशित हो चुका है। यहाँ तक कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी ने भी उनका संग्रह फ्रांसीसी भूमिका के साथ प्रकाशित किया था। वली ने गजल, मसनवी, कसीदा आदि सभी प्रकार की कविताएं लिखी हैं। कहा गया है कि उनका नाम उनसे पहले दिल्ली पहुंच गया था और उनकी पृष्ठ संख्या 34 गजलें दिल्ली की गलियों और बाजारों में गाई जाती थी। इसका अर्थ यह है कि दक्षिण और उत्तर भारत में साहित्यिक संपर्क स्थापित हो रहा था और दक्षिण के कवियों को उर्दू की यह कविताएं नई और अनुपम जान पड़ती थीं। जब वली दिल्ली पहुंचे तो उनकी बड़ी आवाभगत हुई। उस समय दिल्ली के अधिकतर कवि फारसी में लिखते थे और कविता की श्रृंगारित देवी को बोलचाल की भाषा का साधारण वस्त्र पहनाकर सामने लाना अपमानजनक जान पड़ता था, परंतु वली के काव्य के अध्ययन से उनको भी अनुभव हुआ कि अपनी भाषा में काव्य रचना मनोरंजक और सफल सिद्ध हो सकती है। वली ने अपनी गजलों में अधिकतर प्रेम की भावनाओं का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया है। यह प्रेम भावना व्यापक होकर सूफी मत के प्रेम का रूप ग्रहण कर लेती है। उर्दू काव्य में आरंभ से ही सूफी मत के भाव संचालित होते रहे हैं। वली ने उन विचारों को बड़ी सुंदरता, उत्साह और शक्ति के साथ प्रस्तुत किया। गजलों की एक बड़ी विशेषता यह बताई जाती है कि उनमें साधारण हार्दिक भावनाओं को आपबीती के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सूफी मत भी मनुष्य की आंतरिक मनोभावनाओं को आध्यात्मिकता के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है। इसलिए वली की गजल प्रभावपूर्ण होने के साथ साथ एक सच्चे प्रेमी की वास्तविक कल्पनाएं भी प्रस्तुत करती है। वली की रचनाओं का विश्लेषण करने में एक बात अवश्य स्पष्ट हो जाती है कि उन पर फारसी कवियों का बड़ा प्रभाव था। उनके विचार भी कहीं कहीं उनसे मिलते जुलते हैं, परंतु उनमें इतनी सच्चाई पाई जाती है कि वह बाहर से मांगे हुए विचार नहीं मालूम होते। भारतीय जीवन के चित्र भी वली के यहाँ कम नहीं हैं। गंगा, जमुना, कृष्ण, राम, सरस्वती, सीता, लक्ष्मी, सभी के नाम उनकी कविताओं में बार बार आते हैं। वली की भाषा विशेष रूप से विचारणीय है। जहाँ तक दक्षिणी उर्दू कविता की परंपराओं का संबंध है, उनकी भाषा आरंभ में प्राचीन दक्षिणी कवियों से समानता रखती है, परंतु चूंकि वह दक्षिण से निकलकर भारत के अन्य भागों में भी गए, यहाँ तक कि उर्दू भाषा के उस केंद्र में भी पहुँचे जहाँ उसने जन्म लिया था, इसलिए उनकी भाषा थोड़ी बहुत दक्षिणी उर्दू से विभिन्न भी है। इसके और कई कारण हो सकते हैं। वली अहमदाबाद और औरंगाबाद बहुत दिनों से दिल्ली के संपर्क में था। वहाँ की बोली पर दिल्ली की उर्दू का प्रभाव भी पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त दक्षिण के दिल्ली राज्य में मिल जाने के बाद दोनों भागों में यातायात का सिलसिला भी बराबर जारी था। इसलिए उनकी इस समय की कविता में दिल्ली की खड़ी बोली का रंग अधिक देख पड़ता है। कहा जाता है कि जब वह 1700 ईस्वी में दिल्ली गए तो शाह गुलशन ने उनसे कहा कि तुम फारसी के विषयों और विचारों को अपनी भाषा में क्यों नहीं ले आते। हो सकता है कि वली ने उनके अनुरोध पर अपनी रचनाओं में फारसी से अधिक लाभ उठाया हो, परंतु यह बात भी याद रखना चाहिए कि जहाँ पृष्ठ संख्या 35 कहीं उन्होंने सरल और शुद्ध उर्दू भाषा का प्रयोग किया है, वह बोलचाल की भाषा के बहुत निकट पहुंच गई है। उदाहरण के लिए यह एक शेर देखिए, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे, न होवे उसे जग में हरगिज करार, जिसे इश्क की बेकरारी लगे, वली को कहे तू अगर एक वचन, रकीबों के दिल में कटारी लगे। सजन तुम मुख सेती खोलो नकाब, आहिस्ता आहिस्ता कि ज्यों गुल से निकलता है गुलाब, आहिस्ता आहिस्ता हजारा लाख खुआ, मैं सजन मेरा चले यूं कर सितारों में चले ज्यों महताब, आहिस्ता आहिस्ता सलोने सांवरे पीतम तेरे मोती की झलकाने, किया अवधे पुरैया को खराब, आहिस्ता आहिस्ता। फारसी निष्ठ उर्दू का यह नमूना है, हुस्न का मसनद नसी ओ दिलबरे मुमताज है, दिलबरों का हुस्न जिस मसनद पर फा अंदाज है, गैरे हैरत है खबर उस आईना रू की किसे, राज के पर्दे में जिसकी खामोशी आवाज है, याद से उस रश के गुलजारे इरम के ऐ वली रंग को मेरे सदा ज्यों बुए गुल परवाज है। जैसा कि कहा गया, वली उर्दू के प्रारंभिक कवियों में गिने जाते हैं। उनकी काव्य रचना से भी बढ़कर उनका वह प्रभाव महत्वपूर्ण है जो उत्तर भारत के उर्दू काव्य और भाषा की परंपराओं को व्यापक बनाने का साधन बना। इसका वर्णन आगे के पृष्ठों में सविस्तार से किया जाएगा। इस युग के दूसरे बड़े कवि काजी महमूद बाहरी थे। वह भी एक बड़े सूफी कवि माने जाते हैं। उनकी एक मसनवी जिसका विषय सूफी मत के रहस्यों का वर्णन है, मन लगन के नाम से अनेक बार प्रकाशित हो चुकी है, बल्कि अब उनकी गजलों का संग्रह जो अप्राप्य था प्रकाशित हो गया है। बाहरी बीजापुर के एक गांव के रहने वाले थे और बीजापुर मुगल राज में मिल गया तो वह हैदराबाद चले आए। पृष्ठ संख्या 36। उनकी भाषा प्राचीन दक्षिणी कवियों से मिलती जुलती है, यद्यपि उनके समय के और कवियों की भाषा कुछ बदल चुकी थी। मन लगन के कई बार प्रकाशित होने से यह पता चलता है कि यह काव्य बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन उसमें तसव्वुफ के ऐसे गंभीर और गूढ़ विचार प्रकट किए गए हैं कि उनका समझना बहुत कठिन जान पड़ता है। यही कारण है कि बाहरी ने स्वयं उसका अर्थ फारसी भाषा में लिखा और उनके एक शिष्य ने उसको गद्य में अर्थ मन लगन के नाम से प्रस्तुत किया। मन लगन को देखते हुए उनकी गजलों की भाषा सरल और स्वाभाविक लगती है। उदाहरण यह है, सुर तुझ मुख मिसाल ने सच है, लाल तुझ लव से लाल ने सच है, धन तेरे मद मते नयन के निमन, पुर्तगाली कलाल ने सच है, अब खुशामद तू बस कर ऐ वहरी, तुझ पर उसका ख्याल ने सच है। सिराज औरंगाबादी इस युग के तीसरे बड़े कवि थे। उनकी जन्मभूमि भी औरंगाबाद थी। बालपन ही से उनका स्वभाव सौंदर्य प्रेम की ओर आकृष्ट था। तभी पूरी तरह से युवावस्था को भी नहीं पहुँचते थे कि उन पर एक प्रकार की उन्मादकता छा जाती है। 7 वर्ष बीतने के पश्चात जब यह स्थिति समाप्त हो गई तो सूफियों और फकीरों के संग रहने लगे और सारा जीवन इसी प्रकार व्यतीत हो गया। जिस समय उन पर उन्माद का प्रभाव था, उन्होंने फारसी में बहुत कुछ कहा, परंतु वह नष्ट हो गया। उसका कुछ अंश उनके प्रकाशित संग्रहों में सम्मिलित है। उर्दू के सूफी कवियों में सिराज को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके जीवन और रचनाओं में गहरा संबंध मिलता है, बल्कि दोनों में एक प्रकार की लगन और उत्साह का पता चलता है। उनके संग्रह में हर प्रकार की कविताएं मिलती हैं, लेकिन सच यह है कि वह अपनी मसनवी बोस्तानी ख्याल और अपनी गजलों की वजह से प्रसिद्ध हैं। बोस्तानी ख्याल एक महत्वपूर्ण रचना है जो 1747 ईस्वी के लगभग लिखी गई। इसमें 1160 शेर हैं, किंतु सिराज ने इसे केवल 2 दिन में लिख डाला था। इसकी कहानी बड़ी सरल और सीधी है और आपबीती के ढंग पर लिखी गई है। एक कवि और प्रेमी के जीवन का ऐसा वास्तविक और सुंदर चित्रण करना किसी साधारण कवि के बस की बात नहीं। अनुभूति की वास्तविकता तथा विचारों की नूतनता की दृष्टि से भी यह मसनवी उर्दू की प्रमुख कृतियों में गिनी जाती है। सिराज की गजलें भी बड़ी मनोहर, सुंदर और प्रभावशाली हैं। गजल में उन्होंने पृष्ठ संख्या 37 वली का अनुकरण किया है और अपनी कविताओं में उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया है। सिराज की भाषा भी दक्षिण भारत की उर्दू के मुकाबले में उत्तर भारत की उर्दू से अधिक प्रभावित मालूम पड़ती है। सिराज की मृत्यु 1764 ईस्वी में हुई। उनके मित्रों और शिष्यों में उनके नाम को एक कवि के ही रूप में नहीं बल्कि एक संत के रूप में जीवित रखने के लिए उनका मकबरा बनवा दिया, जो अब भी औरंगाबाद में मौजूद है। नमूने के लिए सिराज के कुछ शेर नीचे दिए जाते हैं। सब जगत ढूंढ फिर प्यू को न पाया हरगिज, दिल के गोशे मैं मका था मुझे मालूम न था। खबरे तहे उरे इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। चली समते गैब से वो हवा की चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाखे निहाले गम जिसे दिल कहे सो हरी रही। मुद्दत से गुम हुआ दिले बेगाना ऐ सिराज, शायद कि जल गया है किसी आशना के हाथ। इस समय तक उत्तर भारत में उर्दू काव्य की परंपराएं काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, किंतु उचित होगा कि इसकी चर्चा करने के पूर्व दक्षिण भारत में उर्दू की साहित्यिक गतिविधियों का अध्ययन कर लिया जाए। 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के आरंभ तक दक्षिणी उर्दू अधिकतर उत्तर भारत से स्वतंत्र उन्नत करती रही। आरंभ में तो केवल सूफी कवियों और लेखकों ने उस भाषा को अपनाया जो उत्तर भारत से द्रविड़ और महाराष्ट्र की भाषाओं के बीच में आ पहुंची थी, किंतु थोड़ा ही समय बीतने के पश्चात उस भाषा ने यहाँ जड़ पकड़ ली और हर प्रकार की आवश्यकताएं इसमें पूरी होने लगी। यद्यपि इस समय तक अधिकांश यह भाषा अधिकतर मुसलमानों में प्रचलित थी, परंतु यह कहना अधिक संगत एवं उचित होगा कि वह एक भारतीय भाषा थी जो हिंदू मुसलमान तथा अन्य जातियों के मेलजोल का प्रतीक थी, जिसका समावेश कला तथा संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में हो चुका था। इस अवसर पर इस बात की ओर संकेत करना भी आवश्यक है कि कई लेखकों ने वली पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उर्दू काव्य का मुंह भारत से हटाकर ईरान की ओर फेर दिया और जो भारतीयता दक्कनी उर्दू में पाई जाती थी वह नष्ट हो गई। परंतु यह बात वही लोग कह सकते हैं जिन्होंने उत्तर भारत की भाषाओं की प्रगति के कारणों को नहीं समझा है। जिस समय मुगल राज्य का पतन होना शुरू हुआ, उसी समय से अवधी और ब्रजभाषा ने साहित्यिक रूप में उन्नति करना कम कर दिया। पृष्ठ संख्या 38। अब कोई कबीर जायसी, रहीम, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास जन्म नहीं ले रहा था। दूसरा कारण यह था कि विद्वानों ने, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सामंतवादी गौरव को सामने रखकर फारसी को अपनाने की चेष्टा की थी और बोल चाल के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करते थे। ऐसा लगता है कि वह अपनी भाषा की साहित्यिक शक्ति का कुछ ठीक से अनुमान नहीं लगा सकते थे। इसलिए जब वली ने दिल्ली पहुंचकर एक उन्नतिशील भाषा देखी जो उनकी दक्कनी उर्दू से समानता रखते हुए भी पृथक रूप रखती थी, तो उन्होंने उसे अपने विचारों और भावनाओं के प्रकट करने के लिए स्वीकार कर लिया। कहा जा सकता है कि उन्होंने उत्तर भारत के कवियों को अपनी भाषा में काव्य रचना की प्रेरणा दी और उसके बदले में एक अधिक सुंदर और प्रगतिशील उर्दू अपने साथ दक्षिण को ले गए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, दोनों एक ही भाषा के दो रूप थे। उन्होंने एक की सहायता से दूसरे को प्रभावशाली और प्रौढ़ बनाने की चेष्टा की और दक्षिण भारत को उत्तरी भारत से मिलाना चाहा। उन्होंने जानबूझकर अपनी भाषा को कठिन या फारसी निष्ठ नहीं बनाया, बल्कि दक्षिणी उर्दू को उसकी जन्मभूमि की उर्दू के निकट लाने की कोशिश की। उत्तर भारत से संपर्क ना होने के कारण दक्षिणी उर्दू की बाढ़ रुकी हुई थी। अब दोनों के सोते फिर मिल गए और आगे चलकर उनमें सामंजस्य स्थापित हो गया।